मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 29 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि पिछले लेक्चर में जो खासकर नैतिकता पर बात की जा रही थी, कुछ पूरी बात हो नहीं पाई, तो इसमें मैं उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और नैतिकता के बारे में आइए इसमें कुछ हम और तथ्य देख लेते हैं। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी बातें इसके बारे में और की जानी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में सच पूछे तो मैंने दो महत्वपूर्ण बातें आपसे बताई थी। पहला तो यह है कि जो नैतिकता है वो हमारे आचरण का मूल्यांकन करने की एक कसौटी है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है। तो इसे आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कि नैतिकता कहीं न कहीं हमें हमारे कर्तव्य का बोध भी कराता है। कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए। याद रखिए कि यहां वह अधिकार का बोध नहीं कराता है, वह कर्तव्य का बोध कराता है कि यार आपको ये करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर अब आप जानिए। तो दूसरा पॉइंट यही था कि ये बेसिकली ऐच्छिक है, राइट, कि आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। नहीं करना चाहेंगे तो आपको कोई उससे सजा मिलने वाली नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही एक अगला बिंदु जुड़ा हुआ है, सजा आपको कोई बाहरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगा, कोई बाहरी व्यक्ति भी नहीं देगा। ज्यादा ज्यादा वो आपकी आलोचना कर लेंगे, आपको खराब व्यक्ति मानने लगेंगे, गैर जिम्मेदार व्यक्ति कहेंगे, बस यहीं तक है। लेकिन चूंकि जो नैतिकता है उसका संबंध हमारे आंतरिक गुण से है, आंतरिक गुण से है, जो मनुष्य में एक मूलभूत कुछ गुण होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, चूंकि वह उनसे संबंधित है, इसीलिए अगर सजा मिलेगी भी तो समझ लीजिए कि हमारे खुद के द्वारा मिलेगी, जिसे आप कह सकते हैं कि हमारी अंतरात्मा हमें कहीं ना कहीं कचोटेगी अगर हम अपने उस दायित्व को पूरा नहीं कर पाए तो। जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमें अपराध बोध का एहसास होगा कि नहीं यार देखो वो व्यक्ति तड़प रहा था, मैं उसे वहां पहुंचा सकता था लेकिन मैंने नहीं पहुंचाया। उस समय जिस वजह से भी आपने यह निर्णय लिया हो, ले लिया, लेकिन आप उसे आसानी से भूल नहीं पाएंगे। सामान्य व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं और इसीलिए नैतिकता के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये सामान्य व्यक्तियों के लिए ही है। मान लीजिए कि कोई पागल है तो पागल व्यक्ति के लिए नैतिकता नहीं है। मान लीजिए कि बच्चा है, कोई 6-7 साल की उम्र तक का अगर बच्चा है तो उसके लिए भी फिर नैतिकता अनैतिकता कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उसमें वह बोध नहीं आया है। ठीक इसी तरह से यह भी कहा जाता है कि भाई कोई बीमार व्यक्ति है, अब देखिए कोई बीमार व्यक्ति है, चिड़चिड़ा रहा है, असावधानीवश उससे बहुत से अश्लील चीजें भी हो रही हैं, कपड़े नहीं संभल रहे हैं, चूंकि बीमार व्यक्ति है तो आप उसे नहीं कहेंगे कि यार ये देखो कितना बेकार आदमी, कितना अनैतिक आदमी है, कितना भ्रष्ट आदमी, क्योंकि वो बीमार है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जो नैतिकता है वह मूलतः सामान्य व्यक्तियों पर ही लागू होता है और जब हम उसे नहीं कर पाते पूरा तो फिर कहीं ना कहीं हम अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार ये कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की वस्तु है, एक तरह का आंतरिक भाव है। लेकिन आंतरिक भाव होने के साथ साथ हमें ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि यह बेसिकली भौतिक जगत के क्रियाकलापों से जुड़ी हुई है। भौतिक जगत के क्रियाकलापों से कहने का मतलब है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, है ना, हमारा इंटरेक्शन होता है, उनसे बात व्यवहार बात ये सब चीजें होती हैं, हम काम करते हैं, तो इसका संबंध उन्हीं से है, किसी दूसरे लोक से नहीं है, परलोक से नहीं है, स्वर्ग से नहीं है। जिसका संबंध स्वर्ग से है उसे हम क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जिसका संबंध स्वर्ग से होता है, जिसका संबंध नरक से होता है, वो धर्म की क्षेत्र में चला जाता है, धर्म। और जब धर्म में होता है तो वहां सही और गलत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह होता है पाप पुण्य। आपने गलत काम कह दिया तो ये पाप कर दिया आपने, और आपने सही काम कर दिया तो आपने बड़े धर्म का काम किया है। अब ये बात अलग है कि बोलचाल में हम खुद भी कह देते हैं यार ये सही किया ये गलत किया, लेकिन सामान्यतः वहां पाप और पुण्य की भाषा में बात होती है और ईश्वर की भाषा में बात होगी, वो दूसरे लोक की बात हो जाएगी। जबकि जो नैतिकता का संबंध है वह इसी लोक से है, जो हमें दिखाई दे रहा है इसी लोक से है, राइट। तो ये कुछ बातें जो मुझे लगा कि और की जानी चाहिए नैतिकता के संबंध में, थोड़ी सी वो बातें की जाएं। अब मैं नैतिकता को लेकर एक थोड़ी सी दूसरी बात करना चाहूंगा, एक अंतर को स्पष्ट करना चाहूंगा, यू कह लीजिए वो अंतर वैल्यू के साथ, मानव मूल्य, जिसे आप ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि हम कहें ह्यूमन वैल्यू, है ना। वैसे आप बोलचाल की दृष्टि से देखेंगे या जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं नैतिकता और वैल्यू एक जैसे मालूम पड़ेंगे आपको। यहां वैल्यू का संबंध ह्यूमन वैल्यू से है, वस्तु के मूल्य से नहीं है। ये अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, हम बेसिकली नीति शास्त्र के विषय की बात कर रहे हैं ना, मानव शास्त्र, मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं, मानव शास्त्र भी नहीं कहना चाहिए नहीं तो फिर वो एंथ्रोपोलॉजी हो जाती है उसमें, है ना, नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए मूल्य बेसिकली क्या है, ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यूज को आप एक बहुत बड़े आकार की वस्तु मान सकते हैं, एक बृहद आकार की, जैसे कि एक छाता है, एक बड़ा सा छाता है मान लीजिए, है ना, तो उस बड़े से छाते को आप वैल्यू कह लीजिए, है ना। अब उस छाते के नीचे 10 लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो 10 लोग बैठे हुए हैं इनको आप एथिक्स कह लीजिए कि ये नीतियां बैठी हुई है, नीति शास्त्र बैठी हुई है, नैतिकता बैठी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ह्यूमन वैल्यू है उस ह्यूमन वैल्यू को लागू करने के लिए या कार्य रूप में परिणित करने के लिए जो सिस्टम बनाए जाते हैं, जो प्रणालियां विकसित की जाती हैं, जो निर्धारित किया जाता है, चाहे वो रीति रिवाज के रूप में निर्धारित कर दिया जाए, एक्शन के रूप में निर्धारित कर दिया जाए, परंपराओं के रूप में कर दिया जाए, प्रथा के रूप में कर दिया जाए, उन्हें हम कहते हैं नैतिकताएं। इसका मतलब हुआ कि नैतिकताओं का जो जन्म होता है वो मूल्यों से होता है, मूल्यों से, कि आप किन मूल्यों को लेकर चल रहे हैं। अब मूल्य के उदाहरण के रूप में जैसे आप कह लीजिए सद्भाव, शांति, अहिंसा, ये सारे के सारे मूल्य हैं। अब आप देखिए कि जब हम कहते हैं शांति, अहिंसा, सद्भाव, करुणा, दया, बड़ों के प्रति सम्मान, तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये आपको अब्स्ट्रैक्ट लगेंगी। कुछ दिखाई दे रहा है इसके कहने से? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये आप जानते हैं कि यार चीज बड़ी है, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। देखिए गरीब की मदद करनी चाहिए, ये छोटी चीज है उस रूप में कि भाई ठीक है आप जाइए, एक्शन दिखाई दे रहा है ना कि एक गरीब आदमी आपके तुरंत आंखों के सामने आ गया होगा और उसकी मदद करनी चाहिए तो वो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट शांति क्या दिखाई दे रही है? अब ये मत कह दीजिएगा कि सब मेरे पड़ोस में शांति रहती है वो मुझे दिखाई दे रही है। सामान्यतः ये जो मूल्य से संबंधित जितने भी तत्व होते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त होते हैं, आप कह लीजिए निर्गुण होते हैं। अब इस निर्गुण को सगुण कैसे बनाया जाए? तो सच यह है कि इस निर्गुण को सगुण बनाने के लिए, इस अमूर्त को मूर्त रूप देने के लिए नैतिकता के प्रतिमान स्थापित किए जाते हैं। अब आप देखिए कि जैसे शांति, शांति मूल्य है, एक राष्ट्र है यार वो बहुत ही शांति प्रिय राष्ट्र है। जैसे अगर हम कहें कि जो जापान का संविधान है वो बहुत ही शांति प्रिय संविधान है, तो अब शांति प्रिय संविधान है तो उस जो संविधान बनाया गया होगा वो शांति प्रिय टाइप का बनाया गया होगा। तो आप देखिए कि उसके उसके संविधान में बकायदे जापान की अपनी सेना नहीं है, सेना नहीं है, वो किसी भी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, अपनी हल दूसरे देशों के साथ जो भी विवाद होगा, जब सेना ही नहीं है तो क्या आक्रमण करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएगा, क्योंकि नागासाकी हिरोशिमा पे जब उसके बम गिराया गया था तो उसका इस तरह का संविधान बना। वो बहुत झगड़ालू आदमी है तो झगड़ा उसका मूल्य है, चलिए वो उसी प्रिंसिपल पर विश्वास करता है। तो अब उसके जो झगड़ालू वाले होंगे तो बात बात पर चिड़चिड़ाता है, किसी को कुछ बोल देता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता है, आप उसको समझा नहीं सकते, ये उसके मूर्त रूप हो गए। इसी से पता लग रहा है ना कि वो झगड़ालू है, वो शांति प्रिय व्यक्ति है, इन्हीं चीजों से आपको पता लग रहा है। वो दयालु है, वो हिंसक है, जैसे मैं कहूं कि वो समाजवादी मूल्यों में विश्वास करता है, अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, वह लोक कल्याणकारी मूल्यों में विश्वास करता है, वह तानाशाही मूल्यों का समर्थक है। देखिए, जब हमने कहा कि तानाशाही मूल्यों का समर्थक है, तब फिर उसके आप पॉइंट्स निकालेंगे कि वो जो बात कह देता है वह लागू होनी चाहिए, अपने खिलाफ नहीं, सुनना नहीं चाहता है, उसके कहे गए शब्द कानून होते हैं, किसी की भी वो हत्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो तानाशाही है। तो मित्रों, यह है मूल्य और नैतिकता में फर्क। लेकिन देखिए, जो नैतिकता होती है बेसिकली एक तरह से पॉजिटिव वर्ड है, एक सकारात्मक शब्द है, इसका जो नकारात्मक है वो फिर अनैतिक्स है, अनैतिकता ही है। और इसी तरह से मूल्य भी एक सकारात्मक तत्व है, सकारात्मक तत्व है। जैसे मैंने हिंसा की बात कही, तो हिंसा बेसिकली मूल्य नहीं है, है ना, वो एक तरह से भ्रष्ट मूल्य है कह लीजिए। जैसे नैतिक का अनैतिक है, वैसे ही मूल्य का अमूल्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि अमूल्य का मतलब तो हो जाता है बहुत अधिक मूल्यवान, लेकिन वह नकारात्मक शब्द नहीं है। उदाहरण के तौर पर आइए एक उदाहरण से इसे और भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समाज का मूल्य है, दक्षिण कोरिया में यह बहुत ज्यादा है, बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। आप दक्षिण कोरिया में चले जाइए, अद्भुत रूप से बड़ों का सम्मान किया जाता है वहां, ठीक है। हमारे यहां भी बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए है, लेकिन हम दक्षिण कोरिया जितने नहीं हैं, तो हमारे यहां बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यह मूल्य है, ठीक है। अब इसके सम्मान को, इस मूल्य को मूर्त रूप देने के लिए हमने कुछ नैतिक प्रतिमान बनाए। नैतिक प्रतिमान क्या बनाए कि जैसे ही कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आएगा, अगर हम बैठे हुए हैं तो हम खड़े हो जाएंगे उसके सम्मान में, हम लेटे हुए हैं तो हम बैठ जाएंगे, जैसे ही कोई बड़ा व्यक्ति आएगा हम उसे प्रणाम करेंगे, उसे जगह देंगे, उसके साथ बहुत सम्मान सूचक शब्दों से बात करेंगे, ये सब चीजें हैं ना। अगर कोई बड़ा व्यक्ति हमारे साथ चल रहा हो, मान लीजिए पिताजी मेरे साथ चल रहे हों और उनके हाथ में थैला होगा, तो बट नेचुरल है कि अगर मेरे में इतनी ताकत है कि मैं उस थैले को उठा सकूं, बीमार नहीं हूं या उतना छोटा बच्चा नहीं हूं, तो मैं चाहूंगा कि नहीं, मेरे पिता उस थैले को न उठाएं, मैं उस थैले को उठाऊं। और मेरे पिता, अगर सड़क इतनी पतली है कि एक व्यक्ति ही उस सड़क पर चल सकता है, तो मेरे पिता आगे आगे चलेंगे, उनके पीछे पीछे मैं चलूंगा। तो ये एक सम्मान व्यक्त करने के कुछ प्रतिमान हुए। तो साउथ कोरिया में है, साउथ कोरिया में तो यहां तक है कि मान लीजिए कि एक ऑफिस है और उसमें आप बहुत बड़े अफसर हैं और आपकी उम्र 25 साल की है, आपका बहुत जूनियर है लेकिन उसकी उम्र 40 साल की है, तो ये मत समझिए कि भैया मैं सीनियर हूं तो वो मेरे से छोटा है, नहीं, वो ठीक है, वो ऑफिस के काम के लिए सब ठीक ठाक है, लेकिन आपको हमेशा उसे सम्मान देना पड़ेगा क्योंकि वह उम्र में आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, वो वहां इतना ज्यादा बड़ों के लिए सम्मान है। तो मित्रों, कुल मिलाकर यह कि देखिए, मूल्य एक बहुत बड़ा छाता होता है, उसका दायरा बहुत विस्तृत होता है, और फिर उन मूल्यों को लागू करने के लिए, आचरण में लाने के लिए हम कुछ नैतिक प्रतिमान बनाते हैं, और वो उन नैतिक प्रतिमानों के माध्यम से हम उन मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा मित्रों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नैतिकता बनती है या जो मूल्य बनते हैं, उसके बनने में उस देश के पर्यावरण का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वहां का वातावरण कैसा है, वहां की ऐतिहासिक संस्कृति इतिहास किस तरह का रहा है, वहां की फिलॉसफी किस तरह की रही है। ये बात अलग है कि फिलॉसफी किस तरह की रही है, उसमें ही वातावरण का बहुत बड़ा हाथ होता है, पर्यावरण का बहुत बड़ा हाथ होता है। वहां का जिस तरह का प्राकृतिक परिवेश होगा उसी के अनुकूल हमारी नैतिकताएं भी बनेंगी, उसी के अनुसार हमारे मूल्य भी बनेंगे। जैसे जंगल में जो एकदम घोर जंगल में रह रहे हैं, अब वो अहिंसा के प्रतिमान को नैतिकता को कैसे लेके चलेंगे, उस मूल्य का कैसे पालन करेंगे, क्योंकि वो तो शिकार ही उनके जीवन यापन का साधन है। तो बट नेचुरली कि वहां फिर आपको अहिंसा मूल्य नहीं मिलेगा, मूल्य के रूप में नहीं मिलेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हर समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं और उनकी अपनी अपनी नैतिकताएं होती हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि चाहे मूल्य हो या नैतिकताएं हो, वो समाज से सीखी जाती हैं, यानी कि इनका सामाजिकरण होता है। जो सीखने की प्रक्रिया है वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। जैसा समाज होगा अपने नागरिकों के अंदर, वो उसी तरह के मूल्य डालता है, उसी तरह के नैतिक आचरण करने के लिए वो उनसे अपेक्षा भी करता है। यानी कि ये सीखे जाने वाले मूल्य हैं, सीखे जाने वाली नैतिकताएं होती हैं। तो दोस्तों, मेरी समझ से इस लेक्चर के बाद नैतिकता का जो टॉपिक है आपके दिमाग में और क्लियर हुआ होगा। अब आपको चाहिए कि बिना देरी किए, बिना ज्यादा वक्त जाया किए, आज ही या कल एक दो दिन के अंदर ही आप नैतिकता वाले टॉपिक को पढ़ लें, किताब से पढ़ लें, नोट्स होंगे उससे पढ़ लें, या जो भी आपके पास है, तो आप देखेंगे कि इस विषय पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही मैं अब इस टॉपिक को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप अपने अपने हिसाब से उसे देख लीजिएगा। इजाजत चाहूंगा अब, नमस्कार।